एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी और सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं जिन्होंने अकेले दम पर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की, आप कह सकते हैं, किस्मत ही बदल दी।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेंग शियाओपिंग की, और हमारी ये पड़ताल आधारित है एज़रा वोगल की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब डेंग शियाओपिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना पर।
ये किताब जहाँ तक मुझे याद है 2011 में आई थी, और इसे आज के चीन को समझने के लिए एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है ना?
बिल्कुल। डेंग शियाओपिंग, जिनका पूरा नाम डेंग शियाओपिंग था, 1904 से 1997 तक जिए, वो एक क्रांतिकारी थे, सेना के कमांडर भी रहे, उपराष्ट्रपति बने, और फिर 1978 से लेकर करीब 1989 तक वो चीन के सबसे ताकतवर नेता थे असल में।
और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे उसी की पार्टी ने दो बार निकाला, अपमानित किया, एक तरह से देश निकाला दे दिया,
हाँ बिल्कुल,
वो कैसे कैसे सांस्कृतिक क्रांति की भयानक उथल पुथल के बाद चीन को न सिर्फ संभालता है बल्कि एक ऐसे आर्थिक रास्ते पर ले जाता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
यही तो उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, और इसीलिए आज उनकी कहानी समझना इतना जरूरी है, क्योंकि उसी बदलाव ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, और चीन आज, खैर, दुनिया की एक बड़ी ताकत है। वोगल तो उन्हें साफ तौर पर आधुनिक चीन का मुख्य वास्तुकार कहते हैं।
तो चलिए इस असाधारण सफर को शुरू से समझते हैं। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी?
डेंग का जन्म हुआ 1904 में सिचुआन प्रांत के एक गाँव में। ये वो दौर था जब चीन का आखिरी शाही वंश, चिंग राजवंश, बस खत्म ही हो रहा था। देश गुजर रहा था जिससे अपमान की सदी कहते हैं, मतलब विदेशी ताकतों के हाथों बेइज्जती और कमजोरी का दौर।
तो माहौल बहुत अच्छा नहीं था।
बिल्कुल नहीं। और डेंग उस पीढ़ी के थे जिनके अंदर चीन को फिर से मजबूत और सम्मानित बनाने की एक, कह सकते हैं, जबरदस्त इच्छा थी।
और उनका परिवार, क्या वो भी इसी माहौल से प्रभावित था?
उनका परिवार एक ठीक ठाक जमींदार परिवार था, और उनके पिता जो थे वो नई तालीम, मतलब आधुनिक शिक्षा की अहमियत समझते थे। इसी वजह से सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में डेंग फ्रांस चले गए।
16 साल की उम्र में फ्रांस, वो भी उस जमाने में?
हाँ, एक वर्क स्टडी प्रोग्राम के तहत, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। वहाँ उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, और वहीं उनका राजनीतिक रुझान भी बना। मार्क्सवाद, लेनिनवाद से परिचय हुआ, और जो एनलाई जैसे भविष्य के नेताओं से मुलाकात भी हुई।
अच्छा, तो वहीं से कम्युनिज्म की तरफ झुका हुआ।
दिलचस्प बात यह है कि वोगर बताते हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं था। वो कम्युनिस्ट बाद में बने, पहले वो बस चीन की कमजोरी का हल ढूंढ रहे थे। देशभक्ति पहले आई, विचारधारा बाद में।
समझ गया। फ्रांस के बाद क्या हुआ?
फ्रांस के बाद वो 1926 में सोवियत संघ गए, मॉस्को में पढ़े। वहाँ उन्होंने सीखा कि एक लेनिनवादी पार्टी कैसे काम करती है, उसका अनुशासन, उसकी विचारधारा, मतलब एक तरह से पक्के कैडर बने।
और फिर चीन वापसी?
जी, 1927 में एक ट्रेन्ड क्रांतिकारी के तौर पर लौटे, और कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के मुश्किल और खूनी संघर्ष में शामिल हो गए।
शुरुआती सफर कैसा रहा? क्या आते ही कामयाब हो गए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में उन्हें नाकामी भी मिली। गुआंगशी प्रांत में एक विद्रोह का नेतृत्व किया जो फेल हो गया। इससे उन्हें कड़ा सबक मिला, किताबी सिद्धांत और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है।
लेकिन इससे कुछ सीखा भी होगा उन्होंने।
हाँ, दो चीजें खास तौर पर, एक तो व्यवहारिकता, मतलब प्रैक्टिकल सोच, और दूसरी पार्टी के प्रति वफादारी। धीरे धीरे उनकी काबिलियत माओ त्से-तुंग की नजर में आई। वो मशहूर लैंग मार्च 1934-35 में भी शामिल थे, जिसने माओ की लीडरशिप को पक्का किया।
और फिर युद्ध के दौरान जापान से लड़ाई और गृह युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी?
उस दौरान उन्होंने लियू बोचेंग के साथ पॉलिटिकल कमिसार के तौर पर काम किया। ये सेना में पार्टी का अनुशासन और विचारधारा बनाए रखने वाले अधिकारी होते थे। उनकी लियू डेंग सेना काफी कामयाब रही। यहीं डेंग की संगठन चलाने और प्रशासन संभालने की जबरदस्त काबिलियत खुलकर सामने आई।
तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए वो।
निश्चित रूप से। और इसी वजह से 1949 में जब कम्युनिस्ट चीन बना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो पहले उन्हें दक्षिण पश्चिम चीन संभालने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। फिर 1952 में उन्हें बीजिंग बुला लिया गया।
बीजिंग में क्या भूमिका मिले?
वो पार्टी के महासचिव बने। इससे उन्हें पार्टी के विशाल नौकरशाही तंत्र पर अच्छा खासा कंट्रोल मिल गया। वो माओ के भरोसेमंद और कह सकते हैं सबसे कुशल प्रशासकों में से एक बन गए।
यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, फिर वो दौर कैसे आया जब उन्हें हटाया गया?
हाँ, यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। देखिए, 1958 से 62 के बीच माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक अभियान चलाया, जो आर्थिक रूप से एक भयानक तबाही साबित हुआ। लाखों लोग भूख से मारे गए।
हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत ही दुखद था।
इस तबाही के बाद डेंग और लियू शाओची जैसे नेताओं ने महसूस किया कि अब थोड़ी प्रैक्टिकल नीतियां अपनाने की जरूरत है, जैसे किसानों को थोड़ी निजी खेती की इजाजत देना, गांव के बाजार खोलना।
और यही उनकी वो मशहूर कहावत आई, बिल्ली काली हो या सफेद,
बिल्कुल
क्या फर्क पड़ता है जब तक वो चूहे पकड़ती है।
मतलब ये कि विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन असल चीज है नतीजा। क्या लोगों का पेट भर रहा है, क्या देश आगे बढ़ रहा है।
लेकिन ये प्रैक्टिकल सोच शायद माओ को पसंद नहीं आई होगी।
बिल्कुल नहीं, ये माओ की कट्टर क्रांतिकारी विचारधारा से सीधी टक्कर थी। और नतीजा हुआ 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत।
हो, सांस्कृतिक क्रांति,
वो तो चीन के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय माना जाता है। हाँ, और डेंग उसकी सबसे बड़े शिकारों में से एक थे। उन्हें पूंजीवादी रास्ते पर चलने वाला दूसरा सबसे बड़ा नेता, यानी नंबर टू कैपिटलिस्ट रोडर करार दिया गया। सोचिए, सरे आम बेइज्जती हुई, सारे पद छीन लिए गए
और उन्हें निर्वासित कर दिया गया।
जी, जियांगशी प्रांत भेज दिया गया। वहां एक ट्रैक्टर फैक्ट्री में उन्हें काम करने को मजबूर किया गया। ये उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल, अपमानजनक दौर था। उनके बेटे डेंग पुफांग को रेड गार्ड्स ने इतना सताया कि उन्हें खिड़की से फेंक दिया गया, जिससे वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए।
ये तो बहुत ही भयानक था।
था, लेकिन वोगिल बताते हैं कि ये जो करीब 7 साल का निर्वासन था ना, ये डेंग के लिए एक तरह से आत्मचिंतन का दौर बन गया।
आत्मचिंतन मतलब?
एक आम मजदूर की तरह काम करते हुए उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और आम लोगों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। उनका ये यकीन और पक्का हो गया कि चीन को अब इन अंतहीन सियासी लड़ाइयों से बाहर निकलना होगा। असली जरूरत आर्थिक तरक्की की है। वोगिल के अनुसार यही अनुभव उनके बाद के सुधारों की बौद्धिक और भावनात्मक नींव बना।
उनकी वापसी भी तो बड़ी नाटकीय गई है ना, एक बार नहीं, दो बार हटाए गए वो।
हाँ, पहली बार 1973 में प्रधानमंत्री झोउ एन लाई की मदद से उनकी वापसी हुई, लेकिन 1976 में माओ के कट्टर साथियों, जिन्हें गैंग ऑफ फोर कहा जाता था, ने उन्हें फिर से हटवा दिया।
तो फिर पक्की वापसी कब हुई?
माओ की मौत 1976 और फिर गैंग ऑफ फोर की गिरफ्तारी के बाद ही 1977 में उनकी अंतिम और निर्णायक वापसी हुई।
और तब उनकी उम्र क्या थी?
तब वो 73 साल के थे और इस उम्र में उन्होंने कमाल की राजनीतिक फुर्ती दिखाई। उन्होंने माओ के चुने हुए वारिस हुआ गुओफेंग को धीरे धीरे किनारे किया।
और फिर आया वो अहम मोड़, दिसंबर 1978 का प्लेनम।
बिल्कुल, 11वीं सेंट्रल कमेटी का तीसरा प्लेनम। ये वो ऐतिहासिक बैठक थी जहां डेंग ने आखिरकार पार्टी का फोकस वर्ग संघर्ष से हटाकर आर्थिक निर्माण पर केंद्रित करने में कामयाबी हासिल की। यहीं से उनके मशहूर सुधार और खुलेपन गाइगे काइफांग की नीति की आधिकारिक शुरुआत हुई।
और इस नीति ने तो चीन का नक्शा ही बदल दिया
पूरी तरह से। खेती में छूट दी गई, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs बनाए गए, निजी उद्यम को बढ़ावा मिला, चीन एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ा।
लेकिन इसी दौर में वो थियानमेन चौक वाली घटना भी हुई 1989 में।
हाँ, वो उनकी विरासत पर एक काला धब्बा है, लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना भेजने का फैसला। वो गैल के अनुसार डेंग का मानना था कि आर्थिक तरक्की के लिए राजनीतिक स्थिरता हर कीमत पर जरूरी है। उन्हें डर था कि ये प्रदर्शन कहीं अराजकता न फैला दें।
और रिटायरमेंट के बाद भी उनका असर बना रहा, वो दक्षिणी दौरा।
जी हाँ, 1992 में जब ऐसा लगने लगा था कि शायद सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो 87 साल की उम्र में डेंग ने अपना वो मशहूर दक्षिणी दौरा किया। वो तेजी से तरक्की कर रहे दक्षिणी SEZs में गए और एक तरह से सुधारों को फिर से तेज करने का साफ संदेश दिया। इस दौरे ने चीन के आर्थिक बदलाव को एक नई जान दी, उसे पक्का कर दिया।
और उनका निधन कब हुआ?
1997 में, हांगकांग के चीन को सौंपे जाने से कुछ ही महीने पहले। दिलचस्प बात यह है कि हांगकांग की वापसी की बातचीत भी उन्होंने ही की थी, एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत।
कमाल की जिंदगी थी, उतार चढ़ाव से भरी हुई। तो अगर हम उनकी सोच, उनके मूल्यों को समझने की कोशिश करें तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है?
मेरे ख्याल से जैसा वोगल भी जोर देते हैं, एक शब्द में कहें तो व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिज्म।
हाँ, और उनकी वो कहावत तथ्यों से सत्य की तलाश, शीशी चूशी,
जी,
ये इसी सोच को दर्शाती है ना? मतलब किताबी बातों या विचारधारा की बजाय देखो कि जमीन पर क्या काम कर रहा है।
बिल्कुल, किसी नीति की असली परीक्षा ये नहीं कि वो सुनने में कितनी अच्छी है या किस विचारधारा से मेल खाती है, बल्कि ये कि क्या उससे लोगों की जिंदगी सुधर रही है, क्या उससे देश मजबूत हो रहा है। वो बिल्ली वाली कहावत इसी सोच का सार थी।
और इस व्यावहारिकता के पीछे क्या था, कोई गहरी प्रेरणा?
बाद अपनी पीढ़ी की तरह उनका सबसे बड़ा मकसद था चीन के अपमान की सदी को मिटाना, चीन को एक मजबूत, अमीर और इज्जतदार देश बनाना। उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन थी, अपने आप में मंजिल नहीं।
इसीलिए वो समाजवादी उसूलों को भी जरूरत पड़ने पर बदलने या मोड़ने से नहीं हिचके।
जी हाँ, अगर कोई समाजवादी सिद्धांत देश को अमीर और ताकतवर बनाने के रास्ते में आ रहा था तो उसे बदलने में उन्हें हिचक नहीं थी। इसी सोच से वो समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का मिला जुला मॉडल लेकर आए, जिसने कट्टर कम्युनिस्टों को चौंका दिया लेकिन चीन के लिए काम कर गया।
पुघिल उनकी दो मुख्य प्रेरणाओं की बात करते हैं जहां तक मुझे याद है।
हाँ, पहली तो यही राष्ट्रीय गौरव वापस पाने की इच्छा, जिसे चीनी भाषा में कहते हैं फू गो चांग बिंग, मतलब अमीर देश मजबूत सेना। वो चीन की गरीबी और पिछड़ेपन से बहुत बेचैन थे।
और दूसरी?
दूसरी थी उथल पुथल या अराजकता, जिसे चीनी में लुआन कहते हैं, उसका गहरा डर। उन्होंने अपनी जिंदगी में जंग देखी, गृहयुद्ध देखा और सबसे भयानक सांस्कृतिक क्रांति की अराजकता देखी। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी, अव्यवस्था तरक्की की दुश्मन है, स्थिरता सबसे पहले चाहिए।
और यही डर उनके कुछ सख्त फैसलों के पीछे भी था, जैसे तियानामेन।
हाँ, वोगल का विश्लेषण यही कहता है, ये डर उनकी बड़ी कामयाबियों यानी आर्थिक सुधारों और उनके विवादास्पद कामों दोनों को समझने में मदद करता है।
मुश्किल हालात से निपटने में भी वो माहिर लगते हैं, इतनी बार गिरे फिर उठे।
उनमें गजब का धैर्य और दूर की सोच। जब उन्हें सत्ता से हटाया गया तो उन्होंने इंतजार किया, खुद को तैयार किया। वो गठजोड़ बनाने में भी माहिर थे, पुराने साथियों से वफादारी निभाते थे और बदले में उन्हें वफादारी मिलती भी थी, जिसने उन्हें कई बार बचाया।
आत्मविश्वास भी जबरदस्त रहा होगा।
निश्चित रूप से, अपनी काबिलियत और अपनी सोच की दिशा पर उन्हें पूरा भरोसा था। और हाँ, वो जरूरत पड़ने पर सख्त और निर्मम भी हो सकते थे, खासकर जब पार्टी के शासन जैसे बुनियादी उसूलों की बात आती थी। वो समझौता करना जानते थे लेकिन अपनी लक्ष्मण रेखा भी खींच कर रखते थे।
चलिए अब बात करते हैं उन तीन खास मोड़ों की जिन्होंने उनकी जिंदगी और चीन की दिशा बदल दी। वोगल की किताब में इनका जिक्र है। पहला तो शायद वो सांस्कृतिक क्रांति वाला निर्वासन ही होगा।
हाँ बिल्कुल, 1966 से 1973 तक का वो दौर, जैसा हमने बात की, नंबर टू कैपिटलिस्ट रोडर का तमगा, सारे पद छीन लिए गए, सार्वजनिक अपमान, ट्रैक्टर फैक्ट्री में निर्वासन, परिवार पर मुसीबतें।
और ये हुआ क्यों था? माओ को उनसे क्या डर था?
माओ को लग रहा था कि डेंग और लियू शाओची जैसे नेता, जो ज्यादा प्रैक्टिकल थे, वो चीन को उनके विशुद्ध क्रांतिकारी रास्ते से भटका रहे हैं। डेंग की व्यावहारिकता को माओ ने अपनी विचारधारा के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा।
लेकिन इस निर्वासन ने उन्हें बदला कैसे, इसका असर क्या हुआ?
यही सबसे अहम बात है। ये 7 साल सिर्फ सजा नहीं थे, ये उनके लिए एक तरह का गहरा चिंतन का दौर था। उन्होंने कट्टर विचारधारा और खराब आर्थिक मैनेजमेंट की तबाही को आम लोगों के बीच रह कर देखा। उन्हें समझ आया कि सिर्फ सियासी नारों से देश नहीं चलता, आर्थिक विकास कितना जरूरी है। वोगल कहते हैं कि यही अनुभव उनके बाद के सुधारों की असल बुनियाद बना, यहीं से उनका नया विजन तैयार हुआ।
ठीक है, अब दूसरा बड़ा मोड़।
वो था दिसंबर 1978 का, 11वीं सेंट्रल कमेटी का तीसरा प्लेनम। ये कोई आम पार्टी मीटिंग नहीं थी, ये चीन के इतिहास का एक निर्णायक पल था।
क्या हुआ था इस मीटिंग में ऐसा?
यहीं पर डेंग ने अपनी राजनीतिक कुशलता से पार्टी का पूरा ध्यान वर्ग संघर्ष जैसी माओवादी बातों से हटाकर आर्थिक निर्माण पर केंद्रित कर दिया। यहीं से सुधार और खुलेपन के युग की औपचारिक शुरुआत हुई।
ये उनकी एक बड़ी राजनीतिक जीत थी, है ना?
बिल्कुल, माओ की मौत के बाद पार्टी में सत्ता के लिए खींचतान चल रही थी। डेंग ने अपने पुराने साथियों के नेटवर्क और सबसे बढ़कर व्यवहारिक नतीजों के तर्क का इस्तेमाल करके पार्टी नेतृत्व में बहुमत हासिल कर लिया। इस प्लेनम ने चीन को औपचारिक रूप से एक नए ऐतिहासिक रास्ते पर डाल दिया। अब डेंग चीन के भविष्य के निर्विवाद वास्तुकार बन चुके थे। इसी के बाद खेती में सुधार, विदेशी निवेश के दरवाजे खोलना और धीरे धीरे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई।
और तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद मोड़,
वो था 4 जून 1989 का थियानमेन चौक हत्याकांड।
हाँ, ये घटना आज भी याद की जाती है।
डेंग और पार्टी के दूसरे बुजुर्ग नेताओं ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक छात्रों और आम लोगों को हटाने के लिए सेना के इस्तेमाल का आदेश दिया। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों और कुछ अनुमानों के मुताबिक शायद हजारों निहत्ते नागरिक मारे गए।
इसका कारण क्या बताया जाता है? डेंग ने ऐसा क्यों किया?
वोगल के विश्लेषण के मुताबिक डेंग और उनके साथियों के नजरिए से स्थिति बेकाबू होकर अराजकता लान में बदल रही थी। उन्हें लगा कि ये उस राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है जो आर्थिक सुधारों के लिए बेहद जरूरी थी। उन्हें शायद ये भी डर था कि कहीं ये पूर्वी यूरोप की तरह कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के पतन या गृह युद्ध का कारण न बन जाए।
लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ।
बहुत गहरा। इस घटना ने डेंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए धूमिल कर दिया। इसने चीन के अंदर और बाहर एक साफ संदेश दिया, आर्थिक सुधार की इजाज़त है, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पार्टी की सत्ता के एकाधिकार को किसी भी तरह की राजनीतिक चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने उस डेंगिस्ट मॉडल यानी तानाशाही व्यवस्था के साथ पूंजीवाद को और मजबूत किया, जो आज भी काफी हद तक चीन की पहचान है।
तो डेंग शियाओपिंग की इस पूरी कहानी से, उनकी जिंदगी और उनके फैसलों से हम आज क्या सीख सकते हैं? कुछ मानवीय सबक?
बहुत कुछ। सबसे पहली बात तो शायद यही कि कैसे भयानक मुश्किलें और नाकामी, सोचिए 3-3 बार सत्ता से बेदखल होना किसी इंसान को तोड़ नहीं सकती, बल्कि उसे और मजबूत बना सकती हैं। ये उनके धैर्य, उनके लचीलेपन और उनकी लंबी सोच की कहानी है।
और क्या ये सबक सिर्फ उन्हीं पर लागू होते हैं, या इनमें कुछ ऐसा है जिससे हम सब जुड़ सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जैसे नाकामी से सीखना, डेंग ने अपने निर्वासन के सालों को सिर्फ वक्त काटने में नहीं गंवाया, उन्होंने उस दौर का इस्तेमाल सोचने, समझने और भविष्य की योजना बनाने के लिए किया। ये दिखाता है कि असफलताएं अगर सही नजरिए से देखी जाएं, तो सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका बन सकती हैं।
उनकी वो बिल्ली वाली कहावत भी तो है, सिद्धांत बनाम व्यावहारिकता।
हाँ बिल्कुल। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें तय करना होता है कि उसूल ज्यादा जरूरी है या नतीजा। डेंग ने दिखाया कि कभी कभी प्रैक्टिकल होना, ये देखना कि क्या काम कर रहा है, ज्यादा अहम हो जाता है। ये सिर्फ राजनीति में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है।
एक और चीज जो मुझे लगती है वो है स्थिरता और बदलाव के बीच का संतुलन।
सही कहा, ये किसी भी लीडरशिप की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। डेंग ने स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत सख्त, यहां तक के क्रूर कदम उठाए, लेकिन साथ ही उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बदलाव भी लाए जितने शायद ही किसी और ने लाए हों। ये संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है, कितना बदलना है और कितना बचाए रखना है।
और आखिर में उनकी विरासत का जो विरोधाभास है वो भी सोचने पर मजबूर करता है।
निश्चित रूप से, एक ही व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालकर उनकी जिंदगी बेहतर बनाई, और वही व्यक्ति जिसने राजनीतिक आज़ादी को कुचलने का आदेश दिया, ये हमें इंसान की जटिलता के बारे में सिखाता है। कोई भी सिर्फ नायक या सिर्फ खलनायक नहीं होता, जिंदगी और इतिहास अक्सर स्लेटी रंग के होते हैं।
बिल्कुल सही। तो इस सारी बातचीत के बाद अगर हमें डेंग शियाओपिंग की जिंदगी और उनके काम से 3 सबसे खास सबक निकालने हों, एक जज्बाती, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
अगर जज्बाती नजरिए से देखें तो मेरे लिए सबसे शक्तिशाली सबक है उनका अटूट लचीलापन, अनब्रेकेबल रेजिलियंस। भयानक व्यक्तिगत त्रासदियों और राजनीतिक नाकामियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टैक्टर फैक्ट्री में काम करने से लेकर वापस सत्ता के शिखर पर पहुंचकर इतिहास बदलने तक का उनका सफर, ये इंसानी जज्बे की एक असाधारण मिसाल है।
और बौद्धिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सीख
मेरे ख्याल से वो है विचारधारा पर व्यावहारिकता की निर्णायक जीत, Decisive Triumph of Pragmatism over Ideology। उनका वो सिद्धांत तथ्यों से सत्य की तलाश और वो बिल्ली वाली कहावत सिर्फ नारे नहीं थे। वोगेल की किताब ये दिखाती है कि ये एक गहरा बौद्धिक बदलाव था जिसने चीन को दशकों की हठधर्मिता और कट्टर सोच से मुक्त किया। इसने व्यावहारिक नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी और इसी से वो अभूतपूर्व प्रगति संभव हुई।
और आखिर में एक ऐसा सबक जो हम सब पर, हमारी जिंदगी पर लागू हो सके, एक सार्वभौमिक सीख,
वो ये है कि बड़े बदलाव लाने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है, खासकर मुश्किल हालात और बढ़ती उम्र में भी। सोचिए, 73 साल की उम्र में सत्ता में लौटकर देश की दिशा बदलना और फिर 87 साल की उम्र में उस बदलाव को बचाने के लिए दक्षिणी दौरा करना, ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो और हिम्मत हो तो बड़ा असर डालने के लिए कभी भी देर नहीं होती।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।